पाठ 9 अध्याय 10 और 11। हम मिस्र के विरुद्ध उन प्रहारों या विपत्तियों के अंत के निकट हैं जिन्हें अब्बा ने इसलिए नियुक्त किया था ताकि फिरौन इब्रानियों को उनकी दासता से मुक्त करने के लिए सहमत हो जाए। अभी तक कुछ भी काम नहीं आया है। प्रभु द्वारा मिस्र पर लाई गई विपत्तियों की बढ़ती गंभीरता के अनुपात में फिरौन का हृदय उत्तरोत्तर अरियल होता गया है। फिरौन के हृदय की इस कठोरता का कुछ हिस्सा यहोवा का है, कुछ फिरौन की दृढ़ इच्छा शक्ति का। इससे भी अधिक यह बात मिस्र के लोगों के साथ साथ सरकार के लिए भी स्पष्ट हो गई है कि इब्रानियों को किसी तरह चमत्कारिक रूप से आपदाओं की इस श्रृंखला की पहली दो आपदाओं को छोड़कर बाकी सभी से बचा लिया गया है। अध्याय 10 पूरा पढ़ें। आप जानते हैं हम मिस्र के खिलाफ इन सभी विपत्तियों को देख सकते हैं। खूनी पानी, ओले, त्वचा के घाव और अब टिड्ढे और उन्हें प्राचीन लगने वाले या कुछ ऐसा मान सकते हैं जो हमें केवल पिछड़े देशों में ही मिलता है और शायद बिल्कुल विचित्र भी। यानी अगर परमेश्वर हमारे दिनों में अमेरिका या पूरोप में ऐसा कर रहे होते तो विपत्तियां बहुत तेज होती। उनके पास अधिक आधुनिक और तकनीकी स्रोत और अपील होती। परमाणु बम, जैविक हथियार, हमारा विद्युत ग्रिड विफल होना, कंप्यूटर चिप्स का निष्प्रभाव होना, बाहरी अंतरिक्ष से एलियंस का हमला आदि। लेकिन अगर हम इसके बारे में सोचें तो इनमें से हर एक आघात जिसके बारे में हम निर्गमन में PRH रहे हैं आज दुनिया में कहीं भी उतना ही विनाशकारी होगा जितना कि 3000 साल पहले मिस्र में था। कल्पना कीजिए कि अगर हमारा पीने का पानी लगभग सार्वभौमिक स्तर पर प्रदूषित हो जाए, क्या हम इसे हल करने के लिए फिल्ट्रेशन का उपयोग कर सकते हैं? संभवतः, लेकिन बहुत अधिक लागत पर और केवल सबसे अमीर देशों के पास ही यह उपलब्ध होगा। करोड़ लोग दूषित पानी से मर जाएंगे। देखिए कि एक साधारण तूफान कैटरीना ने न्यू ऑर्लियंस और उसके आसपास के इलाकों में क्या किया और कैसे इसने हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया और हमारे मौजूदा राष्ट्रपति को पद से हटाने के करीब पहुंच गया। तूफान के बारे में कोई खास हाईटेक बात नहीं है, है ना? बस एक तेज हवा और बहुत बारिश। कुछ साल पहले माउंट सेंट हेलेंस आपदा को याद करें, इससे जो तबाही हुई, लोगों की जान गई, वॉशिंगटन की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ और आने वाले दशकों के लिए हजारों एकड़ जंगल नष्ट हो गए, ये सब 1 मिलियन साल पुराने ज्वालामुखी से हुआ जो धुआं और पिघली हुई चट्टान के अलावा और कुछ नहीं करता। कुछ वर्ष पहले आई सुनामी के बारे में क्या कहें, अनुमानतः इसमें 5 लाख लोगों की जान गई थी, अनगिनत अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था और यह सब भूकंप और उसके परिणाम स्वरूप समुद्री जल की लहरों से हुआ था। इससे अधिक कम तकनीकी जानकारी आपको नहीं मिल सकती।
जब हम बाइबिल के अंतिम समय के परिदृश्यों को देखते हैं और हमें इन विनाशकारी घटनाओं के बारे में बताया जाता है जो पूरे मानव इतिहास को ग्रहण कर लेंगी, तो हम आम तौर पर इन घटनाओं का वर्णन करने वाले परमेश्वर के भविष्य वक्ताओं के दर्शन को उच्च तकनीक और विज्ञान आधारित प्रयोगों में बदलना चाहते हैं। इसलिए हम ईसाई विद्वानों और लेखकों को यह सोचते हुए सुनते हैं कि यह परमाणु विनिमय या किसी भयानक रासायनिक हथियार के बारे में होना चाहिए। हम स्टार वॉर्स जैसे हथियारों के बारे में सोचते हैं। वास्तव में मनुष्य ने जो कुछ भी आविष्कार किया है या करने की संभावना है वह कभी भी एक एकल तूफान या हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने वाले मध्यम आकार के उल्का की शक्ति के बराबर नहीं है। परिणाम स्वरूप जब लोग पिछले कुछ वर्षों में प्रकृति के इन भयानक उथल पुथल को देखते हैं तो हम परमेश्वर के हाथ को पूरी तरह से नकार देते हैं और कहते हैं, अरे ये तो प्रकृति का अपना काम है, इसे इन बेतुके धार्मिक निर्णयों में से एक मत बनाइए। शायद हम कह सकते हैं कि मिस्र में यह प्रकृति का अपना काम था और शायद अंत के दिनों में भी प्रकृति अपना काम करेगी, लेकिन कोई गलती न करें, यह परमेश्वर के आदेश पर होगा और इसे रोका नहीं जा सकेगा। और यह संभवतः इसलिए नहीं होगा क्योंकि मनुष्य ने इसे घटित किया है, जैसा कि आधुनिक ग्लोबल वार्मिंग भीड़ सोचती है। जैसा कि हमें अब तक सीखना चाहिए, हमें परमेश्वर के पैटर्न को खोजने की आवश्यकता है कि वह मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करता है। और जब हम देखते हैं कि उसने अब तक यह कैसे किया है, तो निश्चित रूप से यह प्रौद्योगिकी प्रगति के माध्यम से नहीं हुआ है। आने वाली तबाही मनुष्यों द्वारा निर्धारित होने की संभावना नहीं है।
मैं एक क्षणिक चक्कर लगाता हूं ताकि आप में से उन लोगों के लिए कुछ बिंदुओं को जोड़ सकूं जिनकी रुचि भविष्यवाणी में है, खास तौर पर अंतिम समय की भविष्यवाणियों में। बाइबल के बहुत कम विद्वान सबसे उदारवादी लोगों को छोड़कर जो बाइबल को प्राचीन इब्रानी साहित्य और काल्पनिक कहानियों के उदाहरण से ज्यादा कुछ नहीं मानते, कहेंगे कि मिस्र पर आई 9 विपत्तियां प्रतीकात्मक या व्यंजनापूर्ण या रूपक थीं, यानी वे वास्तविक नहीं थीं।
शब्दों का मतलब कुछ और ही है। मुख्य धारा के विद्वान आमतौर पर निर्गमन विपत्तियों को शाब्दिक रूप से लेते हैं, भले ही उनमें से कुछ इन चमत्कारों को प्राकृतिक घटनाओं से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं, जिनकी आवृत्ति या तीव्रता सामान्य रूप से देखी जाने वाली आवृत्ति या तीव्रता से ज्यादा या कम नहीं होती है। केवल बाइबल के शब्द ही अलंकृत और अतिरंजित हैं। इसलिए मेरे लिए यह दिलचस्प है कि ये वही विद्वान हैं जो निर्गमन की विपत्तियों के विवरण को शाब्दिक मानते हैं, अक्सर मुहर और कटोरे के न्याय के प्रकाशित वाक्य के विवरणों को प्रतीकात्मक मानते हैं और शाब्दिक नहीं। प्रकाशित वाक्य के अधिकांश न्याय उन्हीं प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करते हैं, केवल विपत्तियों के निर्गमन विवरण की तुलना में बहुत अधिक प्रवर्धित और बहुत व्यापक रूप से फैले हुए हैं। ओले, कीड़े, अंधकार, फोरे, महासागर और नदियां रक्त लाल हो जाती हैं और समुद्री जीवन मर जाता है। ये सभी निर्गमन में वैसे ही होते हैं जैसे वे प्रकाशित वाक्य में होते हैं। और फिर निश्चित रूप से प्रकाशित वाक्य के ऐसे न्याय हैं जो निर्गमन की विपत्तियों में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे मौजूद हैं और स्वाभाविक रूप से होते हैं। भूकंप, सितारों का विस्फोट और हमारे वायुमंडल से उल्काओं का आना। मैं ये बात सिर्फ इस अवधारणा को समझाने के लिए कह रहा हूं कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि परमेश्वर के पैटर्न और सिद्धांत पूरे इतिहास में दोहराए जाते हैं और समय के अंत तक जारी रहेंगे। हम प्रकाशित वाक्य में भी उन्हीं परमेश्वर पैटर्न को देखते हैं जैसे वे मूल रूप से तोरह में स्थापित किए गए थे, यहां तक कि न्याय के तरीके की विशेषताओं के साथ भी। मुझे पता है कि आप में से कई लोग अंत समय की भविष्यवाणी में रुचि रखते हैं, इसलिए जब आप प्रकाशित वाक्य में इन अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी अंत समय की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो ध्यान रखें कि वे बिल्कुल उसी सार और डिजाइन के हैं जो हम निर्गमन के विवरण में पढ़ते हैं। आप उन्हें शाब्दिक रूप से ले सकते हैं और उन्हें शाब्दिक रूप से लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं। शाब्दिक रूप से यह परमेश्वर का तरीका है। वह समस्त मानव जाति के साथ, विश्व के साथ तथा अपने लोगों के साथ बहुत ही सुसंगत तरीके से व्यवहार करता है।
अध्याय 10 की शुरुआत परमेश्वर द्वारा मूसा को फिरौन के पास जाने के एक और निर्देश से होती है। वह मूसा को याद दिलाता है कि उसने फिरौन के भीतर काम किया है ताकि उसका दिल एक दिव्य उद्देश्य के लिए कठोर रहे कि ये सभी चमत्कार संकेत घटित होंगे और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी इब्रानियों के बीच देखा और याद किया जाएगा। और उसने मिस्र का उपयोग इसराइल के लिए किया है। कभी कभी हमें इस अवधारणा को समझने में कठिनाई होती है कि परमेश्वर एक को दूसरे से ज्यादा तरजीह देगा, यहां तक कि दूसरे को बचाने के लिए एक को नष्ट या छुराने की अनुमति भी देगा। इस मामले में यह है कि मिस्र के लोग परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए एक बड़ी कीमत चुकाएंगे और यह कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति फिरौन के हृदय को कठोर बनाए रखेगा। मैंने अक्सर आस्तिक और नास्तिक दोनों से सुना है कि परमेश्वर द्वारा इस तरह की चीजें करना उचित नहीं है। खैर, मुझे लगता है कि अगर हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के न्याय में बैठ सकते हैं और फिर हम उनकी निष्पक्षता के बारे में बहस कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे परमेश्वर के निर्णयों का बचाव करने की आवश्यकता है। उनके नियम और आदेश वही हैं जो वे हैं और वे परिपूर्ण हैं और हमें केवल यह जानने की आवश्यकता है कि वे क्या हैं। जरूरी नहीं कि वे क्यों हैं,
क्या आपको यह विश्वास दिलाकर बरा किया गया है कि परमेश्वर के सभी निर्णय आपके सर्वोत्तम लाभ के लिए हैं? खैर, वे नहीं हैं। परमेश्वर के निर्णय उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उसके राज्य के सर्वोत्तम लाभ के लिए होते हैं, न कि हमारे व्यक्तिगत सांसारिक कल्याण के लिए। हमारा सुख, आराम, सफलता, ये सब परमेश्वर के अपने राज्य को लाने के दिव्य उद्देश्य के लिए पूरी तरह से गौण है।
चौथे पद में मूसा ने फिरौन से कहा कि अगर उसने आज परमेश्वर के लोगों को मुक्त नहीं किया तो कल मिस्र में टिड्डियों का प्रकोप होगा, और न केवल जमीन पर टिड्डियों का इतना आतंक होगा कि जमीन गायब होती नजर आएगी, बल्कि विनाशकारी ओलावृष्टि से खेतों में बची हुई फसलों को भी ये खतरनाक कीड़े खा जाएंगे। इससे भी बढ़कर ये कीड़े लोगों के घरों में घुस जाएंगे। हम सोच सकते हैं कि फिरौन ने मूसा पर विश्वास किया या नहीं, लेकिन उसके जादूगर, सलाहकार और सामान्य रूप से मिस्र के लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने फिरौन से इसराइल को जाने देने की विनती की ताकि वे शांति से रह सकें। वास्तव में उन्होंने पद 7 में कहा, फिरौन, क्या तुम नहीं समझते कि मिस्र पहले से ही तबाह हो चुका है? यहोवा के साथ युद्ध हार चुका है और हम और नहीं ले सकते। जाहिर है हारून और मूसा ने फिरौन की मौजूदगी को कुछ समय के लिए छोड़ दिया ताकि फिरौन मामलों पर विचार कर सके, लेकिन फिर अपने जवाब के लिए वापस आ गया। प्रवाह बदल रहा है। फिरौन इसराइल को जाने देने के बारे में अधिक गंभीर हो रहा है, जैसा कि वह कहता है, ठीक है, जाओ अपने परमेश्वर की सेवा करो, लेकिन तुम में से कौन जाएगा? बेशक अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न का अर्थ है, कौन रहेगा? हालांकि इसके लिए कोई समझौता नहीं था, क्योंकि मूसा ने उत्तर दिया, हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारी लड़कियों और हमारे लड़के और उनके सभी पशुधन। दूसरे शब्दों में, न केवल सभी लोग बल्कि उनकी सारी संपत्ति भी। अब मामला फिरौन के लिए बिल्कुल स्पष्ट है। उसका यह भ्रम कि इसराइल हमेशा के लिए चले जाएंगे सच साबित हो गया है। हर एक यहूदी और उनके हर एक पशुधन को 3 दिन की तीर्थ यात्रा पर जाने की क्या जरूरत है? नहीं, फिरौन सोचता है, वे हमेशा के लिए जाने की योजना बना रहे हैं। इसलिए पद 10 और 11 में फिरौन कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जोस, मैं तुम्हारे बीच से सिर्फ पुरुषों को जाने दूंगा, लेकिन महिलाओं और बच्चों और पशुओं को पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। यह उसका अंतिम उत्तर था, क्योंकि मूसा और हारून को महल से बाहर निकाला जा रहा था। बेशक ये परमेश्वर के लिए काफी नहीं था, इसलिए उसने मूसा से कहा कि वह अपना हाथ बढ़ाए। मूसा को आदेश देना था कि टिड्डियां आए। 8वीं विपत्ति तब शुरू होती है जब पूर्वी हवा चलने लगती है और उस हवा के बहाव में टिड्डियां आ जाती हैं। टिड्डियों का ऐसा झुंड जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाते हैं। यहां फिर से हम देखते हैं कि परमेश्वर पिछली सभी विपत्तियों की तरह मिस्रियों पर हमला करने के लिए प्रकृति का ही उपयोग करता है। फिरौन ने इस पर एक नजर डाली और मूसा और हारून को बुलाया। वह उन्हें अंदर ले आया और जैसा उसने पहले किया था वैसा ही किया। उसने कबूल किया कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, लेकिन इस बार एक और कदम उठाते हुए फिरौन ने माफी भी मांगी। लेकिन यह सच्चा पश्चाताप नहीं था, न ही उसका यह विश्वास कि यहोवा मौजूद है, भरोसा और प्रेम है। यह सिर्फ इस घातक महामारी को दूर करने के लिए जो भी साधन जरूरी थे, चाहे उसके लिए गिरगिराना ही क्यों न पड़े। टिड्डे भुखमरी के जरिए मिस्र को मौत की ओर ले जाएंगे। फिरौन को आखिरकार एहसास हो गया कि यह सब किस ओर ले जा रहा है, और इसलिए उसने दया की भीख मांगी। फिर भी जिस क्षण यहोवा ने हवा को मोरा और टिड्डों को पूर्व की ओर वापस भेजा, और महासागर में फिरौन कठोर हो गया और उसने इसराइल को मुक्त करने से इनकार कर दिया। इस बार फिरौन के अपूर्णीय हृदय को कठोर बनाने का श्रेय परमेश्वर को जाता है। और अब सुस्थापित पैटर्न के अनुसार पद 21 नौवीं विपत्ति लाता है, विपत्तियों के तीसरे समूह की तीसरी विपत्ति, और इसलिए यह फिरौन या मिस्र के लोगों को अघोषित रूप से दी जाती है। और यह विपत्ति अब तक की सभी विपत्तियों में सबसे भयानक है। अंधकार, जो अंतिम मृत्यु, आध्यात्मिक मृत्यु, बुराई का पूर्वाभास है जो निकट है। ऐसा अंधकार जो न केवल दिखाई देता है
बल्कि इतना घना है कि इसे सचमुच महसूस किया जा सकता है। ऐसा अंधकार जो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है, ऐसा अंधकार जो पूरे मिस्र में 3 दिनों तक रहा लेकिन जो घोषेण में नहीं हुआ, जैसा कि हम पद 23 में पढ़ते हैं। कृपया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान से ध्यान दें। परमेश्वर ने जो यहां किया वही उसने सृष्टि के समय भी किया था। उसने अलग किया, उसने अंतर किया और उसने अंधकार को प्रकाश से अलग किया। जो लोग उसके लोगों को गुलामी में रखते थे उनके ऊपर अंधकार था, जो लोग उसकी सेवा करते थे उनके ऊपर प्रकाश था। हमें पद 21 में 4 छोटे शब्दों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। वे अंधकार महसूस करेंगे, मिस्रियों ने अंधकार महसूस किया, इसराइलियों ने प्रकाश महसूस किया। कोई अंधकार या प्रकाश को कैसे महसूस कर सकता है? आह, तोरह के हमारे पहले पाठ को याद करें, जब हमने सृष्टि का अध्ययन किया था और हमने पाया कि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:3 में प्रकाश बनाया तो यह दृश्य प्रकाश तरंगों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रोशनी के प्रकार से अलग था जो उत्पत्ति 1:14 में हुआ था। निर्गमन 10:23 में घोषेण में इज़राइल के ऊपर रहने वाले प्रकाश के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द वही सटीक शब्द है जिसका उपयोग परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:3 में किया था। इब्रानी में शब्द ऊर है और संक्षेप में इसका अर्थ है ज्ञानोदय, यानी बुराई के विपरीत अच्छाई, झूठ के विपरीत सत्य। जब आप दीपक जलाते हैं तो आपको दृश्य प्रकाश मिलता है, जिस प्रकार का प्रकाश उत्पत्ति 1:14 में बताया गया है। जब आप परमेश्वर से सुनते हैं तो आपको आध्यात्मिक प्रकाश मिलता है, ज्ञानोदय, जिस प्रकार का प्रकाश उत्पत्ति 1:3 में बताया गया है। अंतर देखें। खैर, हमने इब्रानियों पर प्रकाश के बारे में बात की तो मिस्रियों पर किस तरह का अंधकार था। फिर से उत्पत्ति में और के विपरीत ज्ञानोदय का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया वही सटीक इब्रानी शब्द, वह शब्द है चौसेक और इसका अर्थ है अंधकार, रात के समय जैसा नहीं बल्कि एक बहुत ही नकारात्मक अंधकार, एक ऐसा अंधकार जो अच्छाई को मिटा देता है, एक ऐसा अंधकार जो लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है, बुराई। उत्पत्ति के आरंभ में जब परमेश्वर ने अपने ज्ञानोदय और आध्यात्मिक भ्रष्टता प्रकाश बनाम अंधकार के बीच अंतर किया था तो ठीक यही शब्द खेल निर्गमन में इसराइल की स्थिति, ज्ञानोदय के विपरीत मिस्र की स्थिति, अंधकार का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया गया है। फिर भी इस विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि दृश्य प्रकाश और अंधकार भी इसमें शामिल थे। तो चलिए, हमें पद 23 से एक रूपक नहीं बनाना चाहिए जहां लिखा है कि एक आदमी अपने भाई को नहीं देख सकता था, न ही वह अपने स्थान से उठ सकता था, या जैसा कि सीजे भी कहता है, लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। किस तरह की परिस्थिति ऐसे घने दृश्य अंधकार का कारण बन सकती है? मेरा मतलब है, सिर्फ सूरज की रोशनी या यहां तक कि चांदनी के बिना भी ऐसा अंधकार पैदा नहीं होता जैसा कि यहां वर्णित किया जा रहा है। मिस्र के लोग अन्य सभी संस्कृतियों की तरह जानते थे कि रात के समय से कैसे निपटना है। उनके पास तेल के दीपक और आग के गड्ढे और मशालें थीं, अंधेरे के बाद अपने काम करने के सभी तरीके। यह विचार कि कोई भी अपने स्थान से हिल नहीं सकता, यानी वे इधर उधर जाने के लिए देख भी नहीं सकते थे, एक सामान्य रात के अनुभव को नहीं दर्शाता है। नहीं, यह रात के समय की 3-24 घंटे की अवधि नहीं थी। समय समय पर कुछ प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं जो एक प्रकार का अंधकार लाती हैं, जिसमें अंधकार वास्तव में प्रकाश को अवशोषित करता हुआ प्रतीत होता है। कैलिफोर्निया से होने के कारण मैंने इनमें से 2 स्थितियों का सामना किया है, कोहरा और धूल भरी आंधी। मैं सांता बारबरा के बाहर हाईवे 101 पर था जब कोहरा इतना घना था कि किसी की हाई बीम कार के सामने 5 या 6 फीट से ज्यादा अंदर नहीं जा पाती थी, और मेरा मतलब सबसे शाब्दिक अर्थ में है। मैं रेगिस्तान में रेत के तूफानों में भी रहा हूं जहां दोपहर के समय सूरज छिप जाता था, लेकिन मिस्र में कभी कभी एक क्रूर प्रकार का धूल का तूफान आता था जिसे चामसिन कहा जाता था। हर कुछ वर्षों में परिस्थितियों का एक संयोजन टकराता है जिससे हवा स्वयं स्थैतिक बिजली से चार्ज हो जाती है, जो सचमुच हवा में धूल के अति सूक्ष्म कणों को उठाती है और निलंबित करती है। साथ ही रेत के मोटे कण आम तौर पर भयंकर हवाओं के साथ आते हैं। अगर यहां किसी ने सुपर ड्राई क्लाइमेट में कुछ समय बिताया है तो आप जानते होंगे कि स्थैतिक बिजली एक सामान्य रोजमर्रा की घटना है जिससे किसी को निपटना ही पड़ता है। कपड़े दूसरे कपड़ों से चिपक जाते हैं, आप कार के दरवाजे का हैंडल पकड़ते ही चौंक जाते हैं, अंधेरे कमरे में अपने सिर पर ऊनी स्वेटर खींचते हैं और आपको स्थैतिक डिस्चार्ज से लाइट शो दिखाई देता है। ये चामशिन धूल के तूफान दिन को रात में बदल देते हैं और खासकर प्राचीन समय में जब दरवाजे सील नहीं होते थे और खिड़कियां दीवार में खुले खेद होती थीं, धूल काफी आसानी से घर के अंदर आ जाती थी। घर के अंदर आप हवाओं और तूफान के सैंड ब्लास्ट प्रभाव से बच सकते हैं, लेकिन आप विद्युत रूप से चार्ज हवा के कारण होने वाले घने धूल के बादलों से नहीं बच सकते। घर के अंदर भी अंधेरा हो गया, तेल के दिए भी मदद नहीं कर रहे थे, गतिशीलता समाप्त हो गई।
मुझे संदेह है कि प्रकाश के दृश्य तत्व के संबंध में यही हुआ है, अन्यथा यह उन 8 पिछली विपत्तियों के चरित्र से अलग होगा जिनमें प्रकृति के सभी प्राकृतिक तत्व शामिल थे। बेशक यह चामसिन अलौकिक मूल का था और प्रकृति में होने वाली घटनाओं से कई गुना अधिक भयंकर था। यह इतना भयंकर था कि इसने फिरौन और मिस्र के लोगों को बुरी तरह डरा दिया, लेकिन असली डर निस्संदेह चौसेक की भावना में आया, आध्यात्मिक अंधकार, बुराई जिसने उन्हें कंबल की तरह ढक लिया। ऐसा प्रकार जो आपकी गर्दन के पीछे के बालों को खड़ा कर देता है जब आप कुछ भी बुरा या खतरनाक नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। यह मिस्र के लिए वास्तव में भयावह समय था, लेकिन उसी देश में इजरायली खुशी से जश्न मना रहे थे। निर्गमन की यह 9वीं विपत्ति इस वर्तमान दुनिया में एक आस्तिक होने की विडंबना की तरह है। अंधकार चौसेक और ज्ञानोदय ओवर साथ साथ मौजूद हैं। हम जो परमेश्वर के प्रकाश से आच्छादित हैं उसी स्थान पर रहते हैं और उसी हवा में सांस लेते हैं, जैसे दुनिया के अधिकांश लोग जो अंधकार की चादर के नीचे हैं। उसी समय जब हम अपने दिलों को तोड़ सकते हैं और उन लोगों के लिए रो सकते हैं जो अंधकार के राजकुमार की सेवा में हैं, हम यह जश्न मना सकते हैं और मनाना चाहिए कि परमेश्वर का ज्ञानोदय हम पर और उन सभी पर है जो उस पर भरोसा करते हैं। ध्यान दें कि केवल इसराइल को प्रकाश मिला। आज भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। हम गैर इजरायली जो जन्म से ही इसराइल के हैं, यीशु के माध्यम से इसराइल की वाचाओं से जुड़ गए हैं। जो इसराइल को लाभ पहुंचाता है वह अब हमें भी लाभ पहुंचाता है। इसीलिए फिरौन मूसा को तत्काल बुलाता है और फिर भी यह मूर्ख विद्रोही राजा परमेश्वर से सौदेबाजी करने की कोशिश करता है। हमने कभी परमेश्वर से सौदेबाजी करने की कोशिश नहीं की है ना। पिछले प्रहार के बाद वह केवल इजरायली पुरुषों को यहोवा की आराधना करने के लिए जाने देने के लिए सहमत हो गया था। अब वह कहता है अगर मूसा परमेश्वर से अंधकार को दूर करने के लिए कहेगा तो सभी इजरायली जा सकते हैं, पुरुष और महिला, लड़की और लड़का, युवा और बूढ़े, हालांकि उनके पशुधन को पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। मूसा ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि सब कुछ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पद 26 में कहा गया है यहोवा ने इसराइल को उसकी सेवा करने और उसके लिए बलिदान करने के लिए बुलाया है, लेकिन वे नहीं जानते कि इसमें क्या शामिल है। दूसरे शब्दों में शायद परमेश्वर उनके सभी पशुधन को चाहेगा, शायद वह कुछ भी न चाहे, शायद वह भेड़ें चाहेगा, शायद मवेशी, उन्हें नहीं बताया गया है। इसीलिए वे केवल यही कर सकते हैं कि अपने सभी लोगों और अपनी सारी संपत्ति को रेगिस्तान में ले जाए, उन्हें परमेश्वर के सामने रखें और देखें कि वह उनसे क्या मांग सकता है। क्या आपने इसे समझा? यहां एक और स्थायी परमेश्वर सिद्धांत है जो अचानक कहीं से फूट पड़ता है। हमें वह सब कुछ सौंपना है जो हमारे पास है और जो हम हैं, खुद को, अपने परिवार को, हर संपत्ति को परमेश्वर के सामने, क्योंकि हम किसी भी क्षण यह नहीं जान सकते कि वह हमसे क्या मांगेगा। हमें विश्वास और भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ भी वापस नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं, यह सब उसका है
और उसे जो भी देना या लेना है वह उसे पसंद है। फिर भी हमारी सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? ठीक है परमेश्वर, आप सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन यह नहीं या यह या यह। आप मुझे ले सकते हैं, बस मेरी नौकरी, मेरा स्वास्थ्य, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मत छीनिए। वे चीज़ें जो इसराइलियों ने फिरौन के आदेश पर छोड़ी होती वे दास्ता में रहीं, इसीलिए मूसा को मना करना पड़ा। हम जो कुछ भी पीछे छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास होता है, वह सब कुछ जो हम परमेश्वर को भेंट करने के लिए अपने साथ नहीं ले जाते, जब हम क्रूस के पास जाते हैं तो मिस्र में रहता है, बंधन और दास्ता में रहता है, और इसलिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए उपलब्ध नहीं होता। परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हमारे पास है उसे उसके सामने रखना है जब हम अपना जीवन उसे सौंपते हैं।
न तो मूसा और न ही फिरौन ने पीछे हटने का फैसला किया। मूसा मवेशियों के बिना नहीं जाएगा और फिरौन इसराइल को उनके साथ जाने नहीं देगा। फिरौन ने मूसा को आदेश दिया कि वह उसके सामने से चला जाए और कभी वापस न आए, क्योंकि अगर वह फिर कभी फिरौन के पास गया तो मूसा को मौत की सजा दी जाएगी। फिरौन ने अपने शब्दों से अपने और अपने लोगों के भाग्य पर मुहर लगा दी है। न्याय से बचने के लिए अब कोई और अवसर नहीं होगा। परमेश्वर हमेशा मनुष्य के साथ संघर्ष नहीं करता, यह समाप्त होता है और हम पहले से नहीं जानते कि वह दिन या घंटा कब है, लेकिन जब यह समाप्त होता है, जब परमेश्वर हमें हमारी जन्मजात दुष्टता के हवाले करने का फैसला करता है, तो मुक्ति की सारी उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। डरावना डरावना विचार और भयानक भयानक सच।
अध्याय 11 पूरा पर है न्याय। अध्याय 11 और 12 में हम जो देखेंगे वह न्याय है। न्याय क्या है? यह वह समय है जब हमें परमेश्वर की न्याय प्रणाली के अनुसार वह मिलता है जो हमारा हक है। बाइबल में न्याय का परिणाम लगभग हमेशा नकारात्मक होता है। हम सभी बचाए गए और बचाए नहीं गए न्याय किए जाने वाले हैं। हालांकि अगर हम बचाए गए हैं, अगर हम उनके बेटे यीशुआ के जरिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमें दोषी नहीं ठहराया जाएगा, हम परमेश्वर के क्रोध के अधीन नहीं होंगे। अगर हम नहीं बचाए गए तो हमें दोषी ठहराया जाएगा। फिरौन और मिस्र को परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने और उनकी आज्ञा मानने के 9 मौके दिए गए थे। मिस्र पर यह 10वां प्रहार अपने साथ कोई विकल्प नहीं लेकर आया है, यह अभी तक एक और नहीं है। चेतावनी फिरौन और मिस्र के लिए पश्चाताप करने का एक और मौका, चेतावनी और विकल्पों का समय बीत चुका है। मिस्र का भाग्य अब कंक्रीट में अंकित हो चुका है। यह तथाकथित 10वीं विपत्ति उस समय के बराबर है जब हम मर जाते हैं और फिर परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। कुछ लोग हमेशा अंधेरे में रहेंगे। आध्यात्मिक अंधकार के लिए इब्रानी शब्द छोसेक याद है। अन्य हमेशा प्रकाश में रहेंगे। इस प्रकाश, इस ज्ञानोदय के लिए इब्रानी शब्द आउर है। इस स्थिति से चाहे वह प्रकाश हो या अंधकार, कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव का कोई अवसर नहीं होगा हमेशा के लिए।
अब अध्याय 11 की पहली 3 पदें मूसा को या तो फिरौन से पहले या फिर उसके साथ हुई आखिरी मुलाकात के दौरान सुनाई गई थी। दूसरे शब्दों में हमने अध्याय 10 में देखा कि जब परमेश्वर ने मिस्र को चौसेक आध्यात्मिक अंधकार और दृश्य अंधकार से ढक दिया था, तब फिरौन ने मूसा को बुलाया था। फिर जब मूसा ने फिरौन के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि सभी इसराइली अपने पशुओं को छोड़कर चले जाएं, तो फिरौन ने गुस्से में मूसा से कहा कि वह कभी वापस ना आए।
खैर, अब हम निर्गमन 11 का 8 में पाते हैं कि उसी बातचीत के दौरान मूसा ने फिरौन पर गुस्सा दिखाया था, और हम देखते हैं कि न केवल मूसा ने फिरौन के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, बल्कि मूसा ने उससे कहा कि उस रात लगभग आधी रात को मिस्र के सभी पहलौठे मर जाएंगे। पद 5 के अनुसार इसमें मवेशी भी शामिल थे, लेकिन इसराइलियों पर इसका कोई असर नहीं होगा, उन पर या उनके मवेशियों पर।
अब जबकि मैं सेसिल बी डेमिल को मिस्र के पहलौठों को मारने वाले को मिस्र की सड़कों पर खतरनाक तरीके से तैरते हुए मौत के हरे बादल के रूप में चित्रित करने के लिए दोषी नहीं ठहराता। मेरा मतलब है उसे कुछ दिखाना था। यह हमें एक तरह से गलत धारणा देता है। मैंने बाइबल के शिक्षकों को यह कहते हुए भी सुना है कि यह मृत्यु का दूत था जो पूरे मिस्र में घूमता था और मिस्र के पहलौठों को मार डालता था। नहीं, ऐसा नहीं था। यह स्वयं यहोवा था जिसने उन सभी लोगों की जान ले ली। यह कैसे हुआ हम नहीं जानते, सिवाय इसके कि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अपने हाथों से था कि पहलौठों का जीवन समाप्त हो गया। प्रभु एदोनाई या मालाच एदोनाई या कुछ और यहोवा कहता है, मैं एक और विपत्ति लाऊंगा। और फिर पद चार में कहता है, यहोवा कहता है, आधी रात के लगभग मैं बाहर जाऊंगा और मिस्र के सभी पहलौठों को मार डालूंगा। और इस भयानक निर्णय के बाद परमेश्वर कहता है कि अब फिरौन तुम्हें मुक्त कर देगा। वास्तव में वह तुम्हें मिस्र से बाहर निकालने जा रहा है, लेकिन इज़राइल के जाने से पहले उन्हें मिस्र को लूटना है, उन्हें मिस्र के लोगों से सोना और चांदी मांगनी है, और उन्हें वह सब मिलेगा जो वे मांगेंगे। क्योंकि पद तीन कहता है कि इब्रानियों ने मिस्रियों की नजरों में अनुग्रह पाया और उन्होंने देखा कि मूसा एक बहुत महान व्यक्ति था। अनुवाद, यहां आप जो चाहें ले लें, हम मूसा या आपके परमेश्वर से नहीं लड़ सकते, बस हमें छोड़ दो। मिस्र के अधिकांश लोगों के लिए मूसा सिर्फ एक शक्तिशाली जादूगर था, मिस्र के जादूगरों से भी ज्यादा शक्तिशाली, और उन्हें अब उसे और परखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
सच कहूं तो यह मिस्र के लोगों के दृष्टिकोण से कुछ अलग नहीं था जैसे कि कोई लुटेरा उनके गले पर चाकू रखे हुए हो और यह पैसे या जान का सौदा था। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी मिस्र के लोग इसे चोरी के रूप में देखते हैं। अगर आपको या आपके किसी मिस्र को इस बात पर संदेह है कि क्या कभी इज़राइल मिस्र में था या फिर कोई निर्गमन भी हुआ था, जो कि वैसे अधिक उदार संप्रदायों में एक बहुत लोकप्रिय विषय बन गया है, तो बस उन्हें किसी आधुनिक मिस्री से इसके बारे में पूछने के लिए कहें। मिस्र से इतना सारा सोना और चांदी ले जाने वाले इज़राइल के प्रति गुस्सा मिस्र के लोगों के दिल में आधुनिक समय तक एक करवी पीरादायक जगह बना हुआ है, 3400 साल बाद भी। आइए हम इस बात को नजरअंदाज न करें कि सिद्ध को कुचलने के परमेश्वर के इस निर्णय के मूल में क्या है। ये अलौकिक विनाश और फिर उनके सोने और चांदी की लूट, क्योंकि परमेश्वर हमें पद सात में याद दिलाता है कि यह सब इसलिए किया गया है ताकि तुम जान सको कि यहोवा मिस्र और इज़राइल के बीच अंतर करता है। हम इसे विपत्तियों की निर्गमन कहानी में बार बार सुनते रहते हैं, है ना, कि परमेश्वर इज़राइल और मिस्र के बीच अंतर करता है। जब परमेश्वर कुछ दोहराता रहता है तो यह निश्चित रूप से एक शर्त है कि हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इज़राइल को बाकी दुनिया से अलग करना कोई मामूली या दूर की बात है या बदल गया है या अप्रचलित हो गया है। याद रखें, बाइबल के दृष्टिकोण से मिस्र जो वास्तविक और मूर्त है एक प्रकार भी है, अर्थात मिस्र पूरी दुनिया का प्रतिनिधि है। वे सभी जो इज़राइल से जुड़े नहीं हैं आज तक और समय के अंत तक, परमेश्वर दुनिया को इज़राइल और बाकी सभी को इज़राइल के रूप में देखता है। इससे हम गैर यहूदी विश्वासियों को क्या मिलता है, शुक्र है कि इज़राइल इज़राइल के हिस्से के रूप में है। ये इज़राइल को आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर के निर्देश का पालन करने का एक अच्छा कारण है, क्योंकि जब हम इज़राइल को आशीर्वाद देते हैं तो हम खुद को भी आशीर्वाद देते हैं। रोमियो 9:10-11 में इस बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन इसे कुछ हद तक रोमियो 11:17 में संक्षेपित किया जा सकता है, जहां संत पौलुस अपने जैतून के पैर के उदाहरण में कहता है, उनके बीच में कलम लगाए गए और जैतून के पैर की समृद्ध जड़ में समान रूप से हिस्सेदार बन गए हैं। पवित्र शास्त्र में इज़राइल को जैतून के पैर के रूप में दर्शाया गया है, और रोमियो
11:24 में, क्योंकि यदि तुम गैर यहूदी स्वभाव से जंगली जैतून के पैर से काटे गए और स्वभाव के विपरीत खेती किए गए जैतून के पैर इज़राइल में कलम लगाए गए, तो ये प्राकृतिक शाखाएं वे इज़राइली जो अविश्वास के कारण काट दिए गए थे, अपने स्वयं के जैतून के पैर में फिर से कलम क्यों नहीं लगाई जाएंगी। परंतु यदि कुछ डालियां तोड़ दी जाए और तुम गैर यहूदी विश्वासी जंगली जैतून, दूसरे शब्दों में परमेश्वर के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक गैर यहूदी विश्वासी को इज़राइल की वाचाओं में शामिल किया जाता है, और यह वे वाचाएं हैं जो आध्यात्मिक पहलू से इज़राइल को इज़राइल बनाती हैं और उन्हें बाकी सभी से अलग करती हैं। परमेश्वर ने अपनी वाचाएं गैर यहूदियों को नहीं दी, वे केवल इज़राइल गए। हालांकि प्रभु और मसीहा के रूप में यीशु पर भरोसा करके हम इज़राइल की वाचाओं में शामिल हो जाते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप बच गए तो आप यहूदी बन गए। शारीरिक यहूदी और शारीरिक गैर यहूदी हैं, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से न तो कोई शारीरिक यहूदी और न ही कोई शारीरिक गैर यहूदी अपने आप सच्चे आध्यात्मिक इज़राइल से संबंधित है, या जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के इज़राइल से केवल वे यहूदी और गैर यहूदी जो यीशु पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं। फिर से मैं आपको सावधान करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इज़राइल के गोत्र का कोई शारीरिक सदस्य अब इज़राइली नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ सांसारिक शारीरिक दृष्टिकोण है और दूसरी तरफ परमेश्वर का आध्यात्मिक स्वर्गीय दृष्टिकोण है। उद्धार मुक्ति केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संबंधित है, शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं। परमेश्वर हमारे शरीर को बचाने के लिए नहीं आया था, वह हमारी शाश्वत आत्माओं को बचाने के लिए आया था। तोरह के अध्ययन के लिए हमें जो बात समझनी चाहिए वह यह है कि परमेश्वर ने इज़राइल और बाकी सभी के बीच एक अंतर बनाया और प्रदर्शित किया। यहां निर्गमन में यह इज़राइल और मिस्रियों के बीच है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है। इज़राइल को अलग रखा गया था, परमेश्वर के विशेष लोग होने के लिए अलग रखा गया था। जब हम चर्च में आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द पवित्रीकरण को सुनते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है परमेश्वर के लिए अलग रखा जाना, और यह कोई पुराना नियम भेद नहीं है जो खत्म हो गया है, यह नया नियम में भी बरकरार है। यीशु ने इज़राइल और दुनिया के बीच इस अंतर को खत्म नहीं किया। हे परमेश्वर, वह खुद एक यहूदी एक इज़राइली था और उसने लोगों को यह बताने का एक बिंदु बनाया। उसने बस गैर यहूदियों को अपने खून के माध्यम से इज़राइल की वाचाओं में शामिल होने के लिए एक नया और स्थायी तरीका प्रदान किया। लेकिन गलत मत समझिए, नई वाचा भी परमेश्वर और गैर यहूदियों के बीच की वाचा नहीं थी, यह इज़राइल के साथ की गई वाचा थी। फिलहाल हम इस विषय पर आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत लंबा पाठ है। आइए एक पल के लिए पीछे चलते हैं। मिस्र पर छाए अंधकार, चौसिक के इन 3 दिनों के दौरान मूसा ने फिरौन को ज्येष्ठ पुत्रों की आसन्न मृत्यु की घोषणा की। क्या आपने इसे समझा? फिर भी जबकि पूरा मिस्र प्रकाश की पूर्ण अनुपस्थिति और उनके ऊपर परी बुराई के आवरण के भय से कांप रहा था, इज़राइल खुशी से जश्न मना रहा था क्योंकि वे प्रकाश का अनुभव कर रहे थे। वे जानते थे कि मुक्ति का समय निकट था। वास्तव में मिस्र के लिए अंधकार के उस समय के दौरान इज़राइल ने यहोवा के मिस्र में सभी ज्येष्ठ पुत्रों को मारने से 4 दिन पहले ही अपने फसह मेमनों का चयन कर लिया था, और यह परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार था। यह फसह की स्थापना और सबसे पहला फसह बन गया। अब आइए 1400 साल आगे बढ़कर 30 ईस्वी पूर्व तक पहुंचे। हम यरूशलेम में हैं और यह फसह इब्रानी में पेसाच है। यीशु ने अपने 12 शिष्यों के साथ शाम को अपना फसह भोज पूरा कर लिया है और अब उसे फांसी की सलाई पर कीलों से ठोंक दिया गया है। खून वह रहा है और दम घुट रहा है, लेकिन मृत्यु से पहले भूमि अचानक घने भयानक अंधकार में ढक जाती है। यीशु हमारे फसह मेमने को चुना गया और बलिदान किया गया जब दुनिया के लिए शाब्दिक और आध्यात्मिक रूप से सब कुछ अंधकारमय था, फिर भी स्वर्ग में बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मुक्ति निकट थी। यरूशलेम में यहूदियों के बीच भी बहुत जश्न मनाया जाना चाहिए था, लेकिन वे सच्चाई के प्रति अंधे थे और यह नहीं देख सकते थे कि मसीह उनका उद्धार था, वह उनका फसह मेमना था। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। अब मसीह के दुख से 2000 साल पहले आज तक हमारी दुनिया और भी अंधकारमय होती जा रही है। आध्यात्मिक रूप से हमारा पूरा ग्रह इतना दुष्ट और विद्रोही होता जा रहा है और चुने हुए आध्यात्मिक अंधकार के अधीन है।
जब हम अपनी दुनिया को नियंत्रण से बाहर होते देखते हैं तो निराश न होना और निराशा, हताशा और भ्रम से भरा महसूस करना कठिन है। लेकिन विश्वासियों के रूप में हम में से जो परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? मिस्र में उन इसराइलियों की तरह, जैसा कि हम निर्गमन में पारेच रहे हैं, उत्सव। हालांकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वे अंधकार में हैं और अनंत आध्यात्मिक मृत्यु का अनुभव करने वाले हैं। हम जो परमेश्वर को जानते हैं उनके प्रकाश में रहते हैं और अनंत प्रकाश में उद्धार का अनुभव करने वाले हैं। इन अंतिम दिनों के दौरान हमें कैसे जीना है इसका उदाहरण, क्योंकि प्रत्येक दिन मनुष्य की दुष्टता और भ्रष्टता के नए और गहरे स्तरों को प्रकट करता है, यहाँ निर्गमन में है। हम इसे वास्तव में परमेश्वर के दृष्टिकोण से ले सकते हैं और लेना चाहिए, अंतिम और पूर्ण मुक्ति। फिर भी इसराइलियों की तरह हमारी खुशी कड़वी मीठी है। उन इसराइलियों की तरह हमारे सभी के पास ऐसे दोस्त और रिश्तेदार और पार्टी ढोसी हैं जिन्होंने दुनिया और उसके सभी अंधकार के साथ जुड़ने का चुनाव किया। दुखद तथ्य यह है कि जब तक यीशु पृथ्वी पर राज्य नहीं करता, तब तक प्रकाश और अंधकार, मृत्यु और जीवन एक साथ राज्य करेंगे। चलो यहीं रुकते हैं और अगले सप्ताह हम इस विषय पर चर्चा शुरू करेंगे।